फिर अगला इनका जुर्म, चार पीछे थे पांचवा भय, वह भी कुफ्रिहिम, और इनका कुफर, जनरल कुफर, ना शुक्री इनकार, अल्लाह की बातों को ना मानना। और छठी बात, व कौलिहिम अला मरियम बुहतानन अजीमा, और इनका मरियम के ऊपर एक बोहतान बांधना इस कौल की वजह से। क्या बोहतान था? नौसुबिल्ला, हजरत मरियम जो पाक दामन थी, अल्लाह ताला ने उनको अल्लाती अहसनत फरजहा कहा सूरत तहरीम में, लेकिन इन्होंने उसको यूसुफ नज्जार के साथ लगा दिया। ये भी बैतुल मक़दस की हदूद में होते थे, तो हज़रत मरियम तो इबादत के लिए वहाँ होती थी, तो जब बीबी मरियम के बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने बोहतान लगा दिया कि नौसुबिल्ला ये इस यूसुफ के साथ ताल्लुकात के नतीजे में पैदा हुआ, ये उनका बोहतान था। और ये सारे ताने हज़रत ईसा के मुँह पे देते थे, क्यों? ताकि आपकी तबलीग कमज़ोर हो जाए। याद रखिए कि बातिल का एक बहुत बड़ा हथियार है, जब वो हक के मुकाबले में ठहर नहीं पाता ना, तो हक बयान करने वाले की ज़ात पे इल्ज़ाम लगा देता है कि इसकी ज़ात को दागदार कर दो, ताकि लोग जब इसके बारे में, अच्छा जी ये है वो, अच्छा जी ये, फिर लोग ये भूल जाते हैं हमें क्या मिल रहा है, वो ये कहते हैं ये दे रहे हम नहीं लेते। नतीजा ये ऐसे ही है कि जैसे किसी के घर में बाहर से कोई बहुत बड़ा खूबसूरत कीमती पैक आए, उसको कोई भेजे मेल में इंतहाई कीमती चीज़, तो कोई देखे कि ये पोस्टमैन लेके आया है, मैं नहीं लेता, ये फेडेक्स से क्यों आ गया, ये GPS से क्यों नहीं आया, और ये DHL से क्यों नहीं आया। आप बताएं, आप उसको अक्लमंद कहेंगे कि बेवकूफ़ कहेंगे? अल्लाह के बंदो, तुम ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, वो देने वाला गोरा है, काला है, नेक है, बद है, तुम्हारी बला से वो जाए भाड़ में, तुम तो जन्नत में चले जाओ। कभी इंसान इस बात पे अपने आप को टटोले तो मैं सोचती हूँ कि कितने गलत फैसलों से बच जाए, कि भाई तुम देने वाले को छोड़ो, ये देखो दे क्या रहा है, और जो ज़ात में खो गए वो कभी ईमान नहीं लाएंगे। मक्का वाले हक के दुश्मन थे और मदीना वाले अल्लाह के नबी के दुश्मन थे। मक्का वालों को अल्लाह के नबी से कोई बैर नहीं था, प्यार करते थे, आपके ख़ानदान के थे, लेकिन उनका मसला क्या था? वो क्यों कहते हो जो हमारे बाप दादा ने नहीं किया, एक नया दीन क्यों दे रहे हो? लेकिन मदीना वाले यहूद को अल्लाह के नबी के पैगाम में कोई शक ना था, दिल में जानते थे ये सच्चे हैं, लेकिन उनका बैर था अल्लाह के नबी की ज़ात से। हमारे में क्यों नहीं है? ये गैरों में क्यों आ गए जो इस किस्म की जकड़बंदियों का शिकार हुआ? अल्लाह कहते फ़ला युमिनून इल्ला कलीला, अपने घर बैठो, नहीं तो ना सही। जब ईमान थोड़ा होता है ना, तो फिर ज़ुबान पे जो बातें आती हैं उसको इंसान तोलता नहीं है, कि बस जो कह रहा हूँ इसको कल भुगतना भी है, लिहाजा हजरत मरियम पे बुहतान लगा दिया। बुहतान का लफ्ज़ बुहिता से है, पीछे आप पढ़ चुके, बुहितल्लज़ी कफर, मबहूत होना, यानी जिस पे इल्ज़ाम लगता है ना वो मबहूत होता है, क्या मेरे बारे में, आर यू श्योर, इस तरह की कैफियत। यानी हजरत मरियम जैसी पाक दामन औरत पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि वो हैरान रह गई कि मेरे बारे में ये बातें करते हो। अगला इनका जुर्म, वक़ौलिहिम इन्ना कतलनल मसीह ईसब्न मरियम, बेशक हमने कत्ल किया मसीह ईसा इब्ने मरियम को, जो रसूल अल्लाह ही, जो अल्लाह के रसूल थे। ये है इनकी जरूरत, ये इस वक्त यहूद के खिलाफ जो लिस्ट बन रही ना, ये अपनी पीक पे है, खुद कह रहे हैं कि हमने ईसा इब्ने मरियम को, जो अल्लाह का रसूल था, कत्ल किया। बताइए ज़रा, इससे बड़ी कोई तबा अल्लाहु अलैहा वाली कैफियत होगी? कोई शख्स माने कि फ़लाँ अल्लाह का रसूल है और फिर भी कि मैंने उसको मार दिया। यहाँ पहले तो एक ये नोट कीजिए कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पूरा नाम है, ये मुकाम बड़ा यूनिक है। हज़रत ईसा को कहीं इब्ने मरियम कहा, कहीं मसीह कहा, लेकिन इनका जो पूरा नाम था ना, अल मसीह ईसब्न मरियम रसूल अल्लाह का लफ्ज़ आ गया। अगर कहीं हज़रत ईसा का पूरा नाम कोई आपसे पूछ ले तो वो यही नाम है। अल्लाह ताला ने उनको माँ की तरफ निस्बत करके बताया, क्योंकि नसारा ने हज़रत ईसा को इब्नुल्ला कहा, अल्लाह ने उनको इब्ने मरियम कहा। अल मसीह क्यों थे? मसा से टच करते थे तो मरीज़ ठीक होते, इसी तरह सियाहत से भी है, बहुत ट्रैवल करते थे तो उसकी वजह से अल मसीह हो गए। ईसा, इस पे हम बात कर चुके पीछे, इब्ने मरियम, और आगे रसूलुल्लाह, ये अल्लाह का रसूल थे। अल्लाह का वो रसूल नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह ने यहाँ ईसा इब्ने मरियम को रसूलुल्लाह क्यों कहा? इसलिए कि यहूद के दिल मानते थे कि ये अल्लाह के रसूल है। देखिए, कभी इंसान अपने दिल के आईने के अंदर झांके ना, तो बहुत सारी वो बातें जिसको ज़ुबान से झुटला रहा होता है ना, उसका दिल कह रहा होता है ये ठीक है, कभी हुए आपके साथ अमली जिंदगी में? आप अपने खानदानी मामलात में, शरीके के रिश्तों में, फैमिली लाइफ में, माशी लाइफ में, माशरती लाइफ में देखें, सारा वक्त भी जिस बात को आप जुबान से बुरा कह रहे होते हैं ना, तो अकेले में बैठते हैं तो आपके दिल में एक ख्याल आता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इंसान का दिल जब तासुब वाला हो जाता है तो वो ऐसी ही बातें करता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूद क्या कहते हैं कि हमने ईसा इब्ने मरियम को कत्ल किया, और इनका ये दावा आज भी बाइबल में मौजूद है। कहते हमने किया कत्ल, हालांकि हकीकत क्या है? अब यहाँ से आगे आप देखेंगे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पे चढ़ाए जाने के नाते से कुछ जो गलत फहमी है उसका इजाला है। फरमाया वमा कतलूहू, और नहीं कत्ल किया उसको। हु कौन है? ईसा। अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तो कहते हैं हमने ईसा को कत्ल किया, लेकिन वमा कतलूहू, नहीं कत्ल किया इन्होंने। वमा सलबूहू, और ना सूली पे चढ़ाया इनको। तो फिर हकीकत क्या है? वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और लेकिन शुभा डल गया उन पर, मुशाबहत हो गई, किसी तरह से इनकी कैफियत जो है वो मुश्तबे हो गई। अल्लाह ताला कह रहे हैं यहूद और नसारा दोनों का ये ख्याल है कि ईसा इब्ने मरियम जो हैं वो कत्ल हो गए, सूली पे चढ़ गए। यहूद तो इसका एक दावा करते हैं, हमने मारा है। कितनी डिटाई है ना, कोई किसी को कहे हाँ मैंने मारा है फलां को। आज दुनिया में भी लोग बड़े बड़े लीडर्स को मार देते हैं लेकिन इकरार नहीं करते, लेकिन इन्होंने बरमला किया। क्यों किया उसकी वजह अगली आयतों को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हज़रत ईसा को कोई कत्ल करना जुर्म नहीं समझते थे, दीन के नाम पे इन्होंने कत्ल किया था। आज भी जितने लोग जुल्म करते हैं या हक वालों के साथ ज्यादतियाँ करते हैं वो ये सोच के नहीं करते कि हम अपने लिए जहन्नुम का ईंधन जमा करें, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम हक दिखा रहे हैं, हम लोगों को सही चेहरे दिखा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी इनका यही ख्याल था, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं व इन्नल्लज़ी नख्तलफू फीही लफी शक के मिनहु, बेशक वो लोग जो इनके बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं असल में वो तो शक का शिकार है। कौन? यहूद और नसारा हज़रत ईसा के बारे में इख्तलाफ करते हैं। क्या इख्तलाफ था इनका? आप देखिए कि हज़रत ईसा की ज़ात के बारे में नसारा में भी मुख्तलिफ अकीदे हैं। तीन मारूफ अकायद हैं नसारा में, क्रिश्चियंस के थ्री सेक्ट्स हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ बातें करते हैं। नामों को छोड़ दें, बोझल पड़ते हैं तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कहते हैं कि मसलूब यानी जिसको सूली पे चढ़ाया वो हज़रत ईसा नहीं थे, कोई और था। एक अकीदे का ये राय है, एक अकीदे के मानने वाले कहते हैं कि हज़रत ईसा की जगह कोई और सूली पे चढ़ गया और मसीह तो वहीं खड़ा उनकी हमाकत में हंस रहा था। दूसरा अकीदा नसारा का कहता है कि चढ़ाया तो मसीह को ही था, लेकिन 3 दिन के बाद वो ज़िंदा हो गए थे। नसारा का एक अकीदा मोरमन से गालिबन, वो कहते हैं कि 3 दिन के बाद ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा हो गए थे, और उसी को आज एक त्यौहार के तौर पे भी मनाते हैं कि हज़रत ईसा की इस वफ़ात सूली पर नहीं हुई बल्कि उतारे गए। इसी तरह तीसरे अकीदे वाले कहते हैं कि सूली पर तो नहीं फौत हुए लेकिन बाद में वहाँ से उतारे जाने के बाद उन्होंने जान दी थी। और बास कहते हैं कि जब सूली पर मरे और उसके बाद उठे तो अपने 10 हवारियों से उन्होंने बातें भी की, यानी जिसको आप कह सकते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। हज़रत ईसा की शख्सियत बड़ी मुख्तलिफ ही शख्सियत है। यहूद कहते हैं हमने मार दिया, दैट्स इट, एक ही दावा है। नसारा कोई कहता है मारे गए, कोई कहता है मारे गए फिर जिंदा हो गए, कुछ कहते हैं नहीं मारे नहीं गए, उनकी जगह कोई और मारा गया। और हमारा इस्लाम क्या कहता है? कि मरे नहीं बल्कि जिंदा जिस्म और रूह के साथ आसमान पे उठा लिए गए। सूरह आल इमरान में हम पढ़ चुके। अल्लाह ताला करें ये जितने भी बातें कर रहे हैं ना, मा लहुम बिही मिन इल्मिन, कोई इल्म ही नहीं है इनको इस बारे में, तो फिर ये बातें कहाँ से कर रहे हैं? इल्लत्तिबा ज़न्नी, ये सिर्फ ज़न है, अटकल के तीर मार रहे हैं। कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, ऐसे थे वैसे थे वैसे थे, और अल्लाह का फैसला किया इस बारे में। वमा कतलूहु यकीनन, और नहीं कत्ल किया उसको यकीनन, ताकीद आ गई ना। इस एक जुमले को आप लिख लें, कुरान का जुमला है कि हदीस का है? क्यों बोला? लोग कहते हैं हदीस में, तो कहते हैं छोड़ दो। आज के दौर में आपको पता है कि इनकार हदीस के फितने में ये भी मसला, कहते हैं जो हदीसें हिस्ट्री से मैच नहीं करती उनको निकाल दो, यानी वो नौज़ बिला गलत हैं, वो फैब्रिकेटेड है। कुरान की आयत को क्या कहेंगे? इसकी कोई तावील की जा सकती? वा मा कतलूहू यकीनन, और नहीं उन्होंने कत्ल किया उसको यकीनन। कितना जोर है, मारा नहीं, कत्ल नहीं किया तो क्या हुआ? असल कैफियत बताई जा रही है, बर रफअहुल्लाहु इलैह, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। रफा के बाद जब इला आ गया, पीछे हम बात कर चुके हैं इस पे वैसे, तो इसका माना होता है फिजिकली उठाना। लेकिन इसके बावजूद आज गैरों को तो छोड़ दें, मुसलमानों का एक गिरोह कहता है कि इससे मुराद उनके दर्जों की बुलंदी है, हालांकि रफाऊ के बाद इला से मुराद फिजिकली, फिजिकली आना, जिस्म और रूह के साथ उठाना। अगर आप देखें सिर्फ रूह गई थी तो फिर क्या खास बात है, हर मरने वाले के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला कहते हैं हमने उनको अपनी तरफ उठा लिया। कैसे उठाया, ये कैसे हो गया, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो कहा वकान अल्लाह अजीज़न हकीमा, वो गालिब भी और हिकमत वाला है। क्या गालिब नहीं है जो सिर्फ रूह को ले जाता है, क्या जिस्म को नहीं लेके जा सकता? हाँ, और क्यों उठाया, इसलिए कि हिकमत वाला है। अब आगे क्या होना है उनके बारे में, वाइम मिन अहलिल किताबी, और जितने भी अहले किताब के गिरोह हैं उनके साथ क्या होगा, इल्ला लयुमिनन बिही क़ब्ल मौतिही, अलबत्ता ज़रूर ईमान लाएंगे उस पर उसकी मौत से पहले। दुनिया में क्या होगा, इस लफ्ज़ की दो तफसीरें, मौती ही को एक जो बात समझी गई जो दुरुस्त बात है ज़्यादा, अल्लाह ताला कहते हैं कि आज जितना भी इख्तलाफ कर रहे हैं, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे तो उनकी फिज़िकल मौत से पहले पहले उस दौर में जितने भी यहूद नसारा होंगे, यहूद से तो वो मुकाबला करेंगे दज्जाल भी जब आएगा, लेकिन जो बच जाएंगे लोग, जितने भी अहले किताब या नसारा उस वक्त होंगे, वो सब इनके ऊपर ईमान ले आएंगे। इस पे इंशाल्लाह हम अभी चंद रिवायतों को देखेंगे तो बात ज़्यादा वाज़े होगी। तो मौत ही से एक मतलब है ईसा की मौत। तो इस आयत का क्या मतलब हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले पहले हर अहले किताब उन पर ईमान लाएगा। और अल्लाह के नबी की अहादीस से ये मज़मून तवातुर के साथ साबित है कि जब हज़रत ईसा दुनिया में आएंगे, यहूद के साथ मुकाबला करेंगे, दज्जाल को मार देंगे, जितने यहूद हैं या तो मारे जाएंगे या उनके हाथों पे मुसलमान हो जाएंगे, और जितने नसारा क्रिश्चियंस उस दौर में होंगे, वो सारे के सारे हज़रत ईसा के साथ इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, ये मुराद है। और इसी तरह दूसरा मानी मौत ही से हर नसरानी की मौत है। इसकी तफसीर क्या की जाती है कि दुनिया में तो हर ईसाई नहीं मान रहा ना हज़रत ईसा का असल स्टेटस, लेकिन जब वो अपने डेथ बेड पे होता है उस वक्त उसको दिखाई जाती है हज़रत ईसा की हकीकत, तो वो मान जाता है। लेकिन क्या फ़ायदा, क्योंकि वो ईमान जो ईमान गरगरा है वो कबूल नहीं होता। तो दोनों बातों में वज़न मौजूद है, लेकिन ज़्यादा बात जो आती है वो क्या है कि हज़रत ईसा के दुनिया में आने के बाद ये लोग उनके ऊपर ईमान लाएंगे। और इस पे आपके साथ कुछ हदीसें मैंने कोट की थी सूरत आले इमरान में, कि आपने फरमाया कि तुम में ईसा इब्ने मरियम आएंगे इस हाल में कि उनके बालों से पानी गिर रहा होगा, वो यूँ हाथ रखे होंगे और वो मुसलमान फजर की नमाज कहीं मुसलमान पढ़ रहे होंगे, हज़रत ईसा उस वक़्त आएंगे मुकाम लुद पर आएंगे, और उनको देखते ही जो मुसलमान इमाम है वो उनको नमाज की ख्वाहिश करेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं, तो हज़रत ईसा कहेंगे कि नहीं, ये उम्मत अपनी इमाम खुद है, आपके साथ नमाज पढ़ेंगे। ये इस बात की दलील होगी कि हज़रत ईसा कोई नए नबी बन के नहीं आए, ये अब बनी इसराइल के अलग नबी नहीं बल्कि अल्लाह के नबी के उम्मती बनकर आएंगे। और ये मज़मून 100 से ज़्यादा हदीसों से मिलता है। इंशाल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तफ़ीमुस सुन्ना की एक सीरीज़ की बुक पढ़ेंगे कुर्बे क़यामत की अलामतें, तो उसमें आप ख़ुद ही देखेंगे कि कितनी हदीसें मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ख़ुद को मुसलमान कहलाने वाला एक गिरोह आज नहीं मानता। उनके ख्याल में ईसा नहीं आएंगे, मसीह नहीं आएंगे, मसीले मसीह आएंगे, और मुकाम लुद को, ये लुद आज भी यरूशलम में है, उसको लुद को उन्होंने लुधियाना कर दिया, और उनके ख्याल में वो आके चले जा चुके। आज जो लोग मुसलमान कहलाते हैं ख़ुद को, लेकिन वो ख़त्म नबूवत के कायल नहीं, वो कहते हैं कि ग़ुलाम अहमद रज़ा जो भी थे वो हज़रत ईसा की मसीह में आ चुके और हज़रत ईसा फौत हो चुके, इन्होंने हज़रत ईसा की कब्र भी बनाई हुई है कश्मीर के मुकाम पे, कहते हैं वो जिनको आना था वो आके ख़त्म हो गए, अब ये आएंगे। हालांकि वो सारी चीज़ें जो हज़रत ईसा के दौर में हदीसों में मिल रही हैं कि वो सलीब को तोड़ेंगे, जिजिये को माफ़ करवाएंगे, सुअर को कत्ल कर देंगे, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। आपने फरमाया वो वक्त होगा जहाँ पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम होगा और एक सजदा लोगों को सारी दुनिया से प्यारा हो जाएगा। क्या वो वक्त आ गया? नहीं आया। तो ये तावीलात का दरवाज़ा खोल के लोगों ने मसीले मसीह के नाम पे क्या कुछ कर दिया। अब इसके बाद इनके ऊपर फ़र्द जुर्म में एक और चीज़ का इजाफा हो रहा है आयत नंबर 160 से 161 में, और वो क्या है? फ़बिज़ुल्म मिनल्लज़ीना हादू, और यहूद के गुनाहों की वजह से, इनके जुल्म की वजह से, हर्रमना अलैहिम तैयिबातिन, हमने हराम कर दी इन पर बहुत सारी पाकीज़ा चीज़ें। कौन सी? ओहेलत लहुम, जो इन पर पहले से हलाल थी। यानी इनके जुल्म की वजह से हमने इन पर कुछ पाकीज़ा चीज़ें हराम कर दी। इसमें क्या बताया गया? दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि शरीयत बहुत आसान थी यहूद को, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो तौरात में शरीयत मिली बहुत आसान थी, लेकिन इन्होंने खुद ही ऐसे फतवे दिए, इनके दीन वालों ने ऐसी मुँह शगाफियाँ की कि दीन मुश्किल से मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि अल्लाह ने कहा जाओ फिर भुगतो, कि एक वक्त आया कि इनको कच्चे गोश्त में से चर्बी उतारनी पड़ती थी। फिर इसी तरह कपड़े पे अगर कहीं गंदगी लग जाती तो उतना कपड़ा काटना पड़ता था। तौबा का तसव्वुर ही नहीं था। पीछे हम पढ़ चुके कि जब इन्होंने बछड़े की पूजा की तो इनको फिर कत्ल का हुक्म दिया गया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने आसान दीन दिया था, लेकिन इनके दीनदारों ने अपने फतवों और इज्तिहादात और कयासात से दीन को मुश्किल कर लिया। ये एक तफसीर है इसकी। दूसरी इसकी एक और तफसीर भी है कि नहीं, असल में अल्लाह ने इनको बड़ा आसान दीन देना था, लेकिन जब देखा कि इनकी तबीयत में इतनी सख्ती और इतनी एड़ पेड़ है, तो अल्लाह ने फिर दीन ही मुश्किल कर दिया। और इस पर हम चौथे पारे के शुरू में बात कर चुके हैं, लन तनालुल बिर्रा के बाद, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात हुई थी। तो इससे हमारे लिए अमल की बात क्या है कि बस दफ़ा अल्लाह ताला कुछ चीज़ें लोगों के गुनाहों की वजह से भी सख्त कर देता है। शरीयत को आसान रखना चाहिए। बहुत सारी मुश्किलात में पढ़कर अगर इंसान अपने आप को समझे कि मैं नेक हो गया हूँ, दीनदार हो गया हूँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। और यहाँ लफ्ज़ अल्लज़ीना हादू पे भी गौर कीजिएगा। ये नहीं कहा कि जो यहूदी हैं, बल्कि अल्लज़ीना हादू का मतलब कि जो यहूदी बन गए। और ये जुमला तो अब कई बार आप सुन चुके हैं ना पिछले पाँच पारों में, कि यहूदी अल्लाह का दिया हुआ नाम नहीं था, ये इनका सेक्टेरियन नेम है, फ़िरका वाराना नाम है जो इन्होंने खुद चूज़ किया था लफ्ज़ इस्लाम के अलावा। जैसे आज हमारी भी तसल्ली नहीं होती जब तक हनफी, शाफई, मालकी, वहाबी या सुन्नी नहीं कहला लेते। बहरहाल आगे क्या फरमाया? हमने इन पर हराम कर दी वो चीज़ें जो हलाल थी। और अगला इनका जुर्म, वबिसद्दिहिम अन सबीलिल्लाहि कसीरा, ये शायद नंबर 9 बन रहा होगा पीछे की लिस्ट में अगर ऐड करेंगे, कि इनका अल्लाह के रास्तों से बहुत सारों को रोकना भी एक जुर्म था। इसकी वजह से हमने इन पर हलाल चीज़ें हराम कर दी। और इनकी लिस्ट में से टॉप मोस्ट चीज़, वह अख्ज़िहिम अर्रिबा, और इनके सूद के लेने की वजह से। कौन सा सूद? वक़द नुहू अनहू। इस जुमले को समझ जाएंगे ना तो इंशाल्लाह पीछे जितनी जगह भी बात हुई है ना इस मौजू पे, वो आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अल्लाह ताला कहते हैं कि यहूद का एक जो बहुत बड़ा जुर्म था वो क्या था, कि उन्होंने उस सूद को लेना शुरू कर दिया। वक़द नुहू अनहू, जिससे ये रोके गए थे। इससे क्या पता चला? कि सूद यहूद की शरीयत में भी हराम है, था, है और रहेगा। आज जहाँ लफ्ज़ सूद की बात आती है ना, लोग कहते हैं हाय इस्लाम सख्त, इस्लाम सख्त, आज के दौर में गुजारा नहीं, कैसे रहेंगे मुसलमान, दिस एंड दैट। तो इस आयत का नंबर नोट कर लीजिए, ये आपके सामने इस बात की दलील है कि सूद हर दौर में हराम था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज की इस दुनिया में हम जब एक नज़र डालते हैं तो ऐसे लगता है कि सूद के बग़ैर तो जिया ही नहीं जा सकता, सूद के बग़ैर तो काम चल ही नहीं सकता। तो ज़रा थोड़ा सा हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ इन पे हराम की थी, इन्होंने उसको हलाल कैसे किया। आयत को पूरा करके मैं आपको थोड़ा सा इस पे बताना चाहूँगी कि आज के दौर का जो सूदी निज़ाम है, यहूद ने इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप राइज किया, और उसकी वजह से आज दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर चल रहा है उसको हर एक देख सकता है। लेकिन अभी अगले हिस्से पे चलें। यहाँ ये बात नोट कर लें कि सूद इन्होंने हलाल कर लिया। अगला इनका जुर्म, व अक्लिहिम अमवालन नासिबिल बातिल, और अगला इनका जुर्म क्या था कि लोगों के माल बातिल तरीके से खाते थे। हर बातिल तरीका, रिश्वत, सुख्त, नाफरमानियाँ, फतवे निकाल कर, इधर की बातें उधर उधर की बातें इधर कर करा के ये लोगों के माल को खा लेते थे। इसकी भी तफसीलें पीछे हम पढ़ चुके कि इनके उलमा फतवे निकालते थे, रिश्वत लेते थे, लोगों को खुश करने के लिए मसाइल को बदलते समनन कलीला। क्या हुआ, वातत नलिल काफरी न मिनहुम अजाबन अलीमा, और हमने तैयार किया काफरों के लिए इनमें से दर्दनाक अजाब। यहाँ कौन से काफरों की बात है? देखिए, अगर आप टेक्स्ट के साथ साथ चल रहे थे तो सारी बात किसकी चली? यहूद की, और आखिर में आ गए काफिर। तो आपसे तफसीर में कोई पूछे, आप कहेंगे इससे मुराद मुशरिकीन मक्का है, इससे मुराद हिंदू हैं, बुद्ध मत है, तो सही नहीं होगा ना। तो यहाँ देखिए कि अल्लाह की चुनी हुई कौम, अल्लाह ताला ने जिनको इतना कुछ दिया उनको क्या कहा गया कि ये काफिर हैं और इनको दर्दनाक अजाब दिए। दुनिया में दर्दनाक अजाब के क्या थे कि जिस मनसब पे फायज किए गए थे उसे उतार लिए गए, पटक के फेंका इनको, अल्लाह ताला ने इमामत इनके हाथ से ले ली। और दूसरी तरफ आखिरत का अजाब जो है वो तो अल्लाह को ही पता है कि अल्लाह ने किसके लिए क्या रखा हुआ है। थोड़ी सी बात करूंगी आज के दौर के जो सूदी निज़ाम को किस तरीके से यहूद के साथ टैली करेंगे। आप सब इस चीज़ को एक छोटे से पैराग्राफ की शक्ल में अगर पॉइंट्स ले सकेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत ही सही आसानी से इस बात को समझ जाएंगे। पहली बात यह है, इस्लाम ने शुरू से जो मनी है ना उसको गोल्ड और सिल्वर की शक्ल में राज किया। सोने के सिक्के होते थे या चांदी के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर तक ऐसा ही था। गोल्ड का जो सिक्का होता था उसको दीनार कहते थे और जो चांदी का सिक्का है उसको दिरहम कहते थे। ये है वो एक यूनिवर्सल लॉ अल्लाह ताला ने इंसानों को जो दिया कि किसी मुल्क की करेंसी क्या होगी, गोल्ड की होगी या सिल्वर की होगी। होता क्या था, हर मुल्क की करेंसी पे उस मुल्क की स्टैम्प होती थी। मिसाल देती हूँ आपको, तसव्वुर में लाएं कॉइन्स, आजकल के दौर में जो कॉइन्स चलते हैं आपके मुल्क के और हैं, दूसरे मुल्क के और हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर करेंसी का रेट फ़र्क है ना, डॉलर इतने का है तो क्रोन इतने का है तो रुपीज़ इतने का है। इस्लाम ने कागज़ की करेंसी को शुरू नहीं किया, शुरू से सोना और चांदी था। इससे बहुत बड़े फ़ायदे हैं। मिसाल है, देखिए कि सोने की एक अपनी वैल्यू है। आप चाइना में जाते हैं वही गोल्ड है, उसका रेट वहाँ की करेंसी में निकल आएगा। चाइना से उठते हैं आप अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका में जो रेट है वो वहीं का चल पड़ा होगा, ऐसे ही है ना। बिल्कुल इस तरह से पूरी दुनिया में एक ही माल चलता था, जिधर आप जाएंगे हर जगह एक होगा। हुआ क्या कि 16 सेंचुरीज में यहूद, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि कुछ नाम इतने मारूफ हैं कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उनके बारे में, लेकिन हुआ क्या कि यहूद ने एक ऐसा प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि लोगों के पास जो सोना और चांदी और जो माल है ये तो असल में हमारा है। फर्स्ट टाइम बैंक ऑफ इंग्लैंड, इसकी बुनियाद जो डली थी वो एक यहूदी ख़ानदान से डली। आज भी वो ख़ानदान मौजूद है। आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि इस वक्त पूरी दुनिया के एसेट्स, वो अमेरिका, कैनेडा, फलां फलां पाकिस्तान, वो एक यहूदी ख़ानदान के हाथ में। बड़ी बड़ी हुकूमतें इस वक्त एक ख़ानदान की ग़ुलाम है। इन्होंने क्या किया कि लोगों को एक दिया, और बहुत बड़ी साजिश थी ये, उन्हें कहा कि तुम अपने सोने चांदी को जो उठा उठा के फिरते हो हमारे पास जमा कराओ, हम बैंक बनाएंगे। बैंक का लफ्ज़ पता है क्या मतलब है? ट्रस्ट, इंग्लिश में कहते हैं बैंकिंग ऑन अदर्स, यानी मैं आप पे ट्रस्ट करती हूँ। अब हुआ क्या कि इन्होंने लोगों का ट्रस्ट लिया, कहा कि आप अपना सोना चांदी हमारे पास जमा करें, इसके बदले में हम आपको इस पैसे की हिफाजत करेंगे और इसके बदले में चेक बुक्स दे देंगे। ये जो कागज़ के टुकड़े हैं ना, चेक बुक्स के तौर पे कि आप उठा के फिरते हैं, चोर ले लेंगे, डाकू ले लेंगे, दिस दैट एंड, तो हम इसको ले लेते हैं। कहा ठीक है, लोगों ने कहा ठीक है, इनके पास जमा कराए, इन्होंने उतनी वैल्यू के चेक दे दिए जो इस बात का सबूत था कि आपका इतना सोना हमारे पास है, इतना चांदी हमारे पास है। कुछ अरसा गुजरता गया, इन्होंने क्या देखा कि लोग जितना पैसा हमारे पास सोना चांदी जमा कराते उतना लेते नहीं है। मिसाल ऐसी है कि जैसे मैं अपने पास एक लॉकर बना लूं, मैं कहूं आप सारे शहर के लोग लाएं, अमानतन मैं आपकी चीज़ें रख लेती हूं और साथ ही आपको एक स्लिप काट के दे दी कि भाई आपका इतना, जब आपका दिल होगा आप ले लेंगे। अब आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पड़ा रहा। इन्होंने जब देखा कि हमारे पास तो लोगों का इतना माल पड़ा हुआ है जो इस्तेमाल में नहीं हो रहा, तो उसे सेकंड स्टेप शुरू हुआ। इन्होंने कहा कि चलो इससे पैसा कमाते हैं। लोगों से कहा कि हम आपको कर्जे देंगे, और कर्ज देंगे कैसे कि आप हमें यानी उसके बदले में कुछ ज़्यादा मनी दे देंगे तो हम आपको कर्ज देंगे। नतीजा क्या निकला कि लोगों का ही पैसा होता था, क्योंकि वो पड़ा जो है बैंक में, अब किसी को क्या पता ये मेरा या आपका या किसी का। इन्होंने कर्ज दिए और साथ उसके ऊपर मनी लेनी शुरू कर दी, तो ये तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया। अब दिल में ये ख्याल क्या था कि किसी भी वक्त अगर लोग अपना माल लेने आ गए तो हमने तो आगे ये दूसरों को कर्ज पे दे दिया हुआ है। इस बात को इंश्योर करने के लिए इन्होंने एक ऐलान किया और क्या कहा कि देखो अभी तक तो हम सिर्फ आपका सोना इधर जमा करते थे, ये चेक दे देते थे, ये डिपॉजिट कर दिया हो गया, लेकिन अब हम आपको इसके ऊपर प्रॉफिट दिया करेंगे। मिसाल है कि किसी ने $10,000 का सोना रखा हुआ है तो हर महीने के एंड पे 10% करके हम आपको इस पर कुछ मनी एक्स्ट्रा देंगे। इससे तो लोगों की आंखें खुल गई, क्योंकि पहले तो सिर्फ मैंने आपके पैसे बस ऐसी चीज़ें रखी हुई थी, अब तो उस पर हर महीने पैसे आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि जो बाकी लोगों के पास पैसे थे वो भी उन्होंने इनको दे दिए। अब इनके पास लोगों के लिए और चीज़ें आई, ये उसमें से 10% इनको सूद देते, लेकिन जब वही पैसा दूसरों को सूद पे देते तो 30-40% कमाते, पैसे बनने लगे ना। अब काफ़ी अरसा तक ये सिलसिला चलता रहा। इस ट्रैप में बड़ी बड़ी हुकूमतें आईं, यानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की आप हिस्ट्री पढ़ के देखें, हमें तो होश ही नहीं है ना, हमारे तो घर के ही खाते नहीं सीधे, हम बाहर क्या पढ़ें। आप यकीन करें पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना वो उस ख़ानदान के आगे यरगमाल हो गई। फिर उसके बाद दूसरी मुल्क, उसका हमारे मौजू से ताल्लुक़ नहीं इसलिए उसको मैं अवॉइड करूँगी। अगला स्टेप क्या हुआ कि जब लोगों ने इनको कर्ज़ देने लेने शुरू किए तो लोगों को लगा कि भाई ये तो आसान तरीका है, तो लोगों ने काम करना छोड़ा। जब काम करना छोड़ा, मुआशरे में बेरोज़गारी बढ़ी, चोरियाँ चकारियाँ बढ़ी, तो उसके नतीजे में लोग और अनसर्टन हो गए। जो घर में बचा खुचा सोना चांदी था वो भी ला के इनको दे दिया कि भाई आप पकड़िए इसको रखें, हमें घर बैठे मिल रहा है तो हमने क्या करना है काम करके। नतीजे में क्या हुआ कि जिसके पास 10,000 था उसको हर महीने और आने लगा, तो अमीर अमीरतर होने लगा और जो गरीब लोग थे वो और गरीब होने लगे। नतीजा क्या हुआ कि मुआशरे में एक डिसऑर्डर हुआ, माल चंद लोगों के हाथों में आ गया। कुछ साल ऐसा चलता रहा, बिल आखिर फिर क्या हुआ कि ये जो इनको हक था ना इस ख़ानदान को लोगों को चेक इश्यूज करने का, डिपॉजिट स्लिप्स देने का, गवर्नमेंट ने ये अपने पास हक ले लिया कि बस आप नहीं कर सकते, आप तो बहुत फलते फूलते जा रहे हैं, आप सोना चांदी बैंकों में रहे लेकिन इसकी स्लिप्स हम देंगे। वही स्लिप्स बाद में नोटों में बदल गई। आज जो डॉलर पाउंड और रियाल और दिरहम और पाकिस्तानी रुपीस, ये उसी स्लिप की एक बदलती हुई फॉर्म है। उस वक़्त से आज तक आप देखिए कि दुनिया में करेंसी हुई, अब करेंसी के साथ क्या खेल हुए, सुभान अल्लाह। यानी रातों रात लोगों की करेंसीज बदली, यानी आज डॉलर अगर 20 रुपए का ना तो अगले दिन अमेरिकन हुकूमत कहती है कि आज से डॉलर 30 का है, तो दुनिया में कोई नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी चीज़ है। भाई मैं कहूँ ये मेरा दुपट्टा है, ये 10 का है या 20 का है, आपको क्या लगे। हुआ क्या कि अब दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों की करेंसी बदल गई। साल है कि आप एक $100 लेते हैं तो वो आज से अगर 10 साल पहले शायद 60 का था तो आज शायद 70 का होगा या 80 का होगा। कैसे फ्लक्चुएशन हुई। अब जुल्म क्या हुआ, पाकिस्तान में बैठे हुए आप डॉलर खरीदते हैं तो आपको जितने का मिलता है, जो आप अमेरिका में जाते हैं तो उससे भी डबल है। अब आप देख रहे हैं ना, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं उनकी करेंसी कितनी वैल्यूएबल हो गई। इस वक्त दुनिया में ये जो इकोनॉमिक डिसऑर्डर है ना, उसकी वजह ये कागज़ के नोट हैं। अगर दुनिया को दोबारा वापस लाना चाहते हैं ना यूनिवर्सल ग्लोब पर, सोने और चांदी पर लाना पड़ेगा। मैं सोना चांदी जेब में डाल के फिरूं, मैं अमेरिका में जाऊं, चाइना में जाऊं, पाकिस्तान में जाऊं, जहां जाके कैश कराऊंगी, गोल्ड की वैल्यू आपको पता है पूरी दुनिया में एक ही जैसी होती है। वो तरीका था दुनिया में पूरे माल को ग्लोबली रोटेट करने का, उसको ख़त्म करके जब करेंसीज आई, सुभान अल्लाह। आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियाँ पता है, यानी आपको पता है कि लोगों की पूरे महीने की जो तनख्वाह होती थी ना वो सिर्फ एक डबल रोटी खरीदने में चली जाती थी। डिवेल्युएशन हुई, लोग बड़े बड़े बैग्स भर के रुपयों के लेके निकलते थे, क्योंकि जब मुल्कों ने देखा कि हमारी करेंसी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उन्होंने और नोट छापे। जितना कोई हुकूमत ज़्यादा नोट छापती है ना, उतनी उसकी वैल्यू हो जाती है चीज़। बचपन में मुझे ये बात समझ नहीं आती थी, कब जब छोटे थे और देखते थे पाकिस्तान बड़ा गरीब मुल्क है, तो मैं खुद सोचा करती थी और नोट छाप लें, कितना को खर्चा आता है, यानी 10 के नोट नहीं तो चले भाई क्यों 10 का छापते हैं, पैसे तो उतने इंक लगती होगी, सारे 100 के छाप लें। लेकिन सुभान अल्लाह, यानी एक खेल है, इतना खेल चला, इस वक्त पूरी दुनिया सिसक रही है। यकीन करें ये सुपर पावर्स के जो हम नाम लेते हैं ये इस वक्त मजबूर हैं, ये उन यहूदी खानदान के हाथों यरगमाल है। पूरी दुनिया के एसेट्स इस वक्त इनके ऐसे, और वो कहते हैं हमने पूरी दुनिया के एसेट्स को अपने कब्जे में लाना है। अल्लाह ताला कहते हैं वह कद नहू अनहू, ये मना किए गए थे उस सूद से, और आज देखिए कि आज पूरी दुनिया को रुला दिया इस मामले में। कभी हालात नहीं बदलेंगे, बदलने हैं तो उसी सूरत, आप क्या अब करें क्या, परेशान तो हो ही गए, अब करें क्या। इस वक्त देखिए कि हमें जो ज़रूरत है ना, मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है। मुसलमान दो चीज़ों के साथ इस पूरे डिसऑर्डर को बदल सकते हैं। पहली बात, इस इल्म को सीखें, इकोनॉमिक्स को सीखें, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुसलमानों की नस्लें जाएं। दूसरी चीज़, इल्म के ज़रिए तकवा हासिल करें। जब तक मनी मैटर्स मुसलमानों के हाथ में इस्लाम की रोशनी में नहीं आते, दुनिया को अमन नहीं मिल सकता। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो सूरत यूसुफ में आप पढ़ेंगे कि किस तरह हज़रत यूसुफ ने मिस्र में आए हुए कहत को इस तरह खुशहाली में बदल दिया कि दूसरों को भी वो गल्ला बेच के पैसे कमा रहे थे। जिन दिनों में दूसरे मुल्कों में कहत था तो मिस्र उस वक़्त सबसे ज़्यादा टॉप पे जा रहा था कि लोग उनसे पैसे ले रहे थे उनकी इस पॉलिसीज़ की वजह से। लेकिन जब हम काम नहीं करते सिर्फ बातें करते हैं तो फिर नतीजा तो वही होगा जो हो रहा है। तो यहाँ पे यहूद की बात करके फिर आयत 162 में अल्लाह ताला ने इसके ऑपोजिट बात कर दी कि ला के निर्रास से खून अफेल इल्म मिन होम, हाँ लेकिन सारे ऐसे नहीं, कुछ इनमें भी हैं रसूख वाले इल्म में, जो इल्म पुख्तगी हासिल कर चुके हैं, वो लोग जो खुदा खौफी भी रखते हैं, जिनके अंदर ईमान भी है, जो अल्लाह ताला की तरफ पलटना भी चाहते हैं, वल मुमिनूना, और ईमान भी ले आते हैं, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं किस पर, बिमा उन्ज़िला इलैक, जो आप पे उतरा। देखिए पहली दफ़ा इनकी लिस्ट में किनका नाम आया, कि नबी जो आपके ऊपर उतरा उस पर भी ईमान लाते हैं। इशारा है इसमें उन यहूद की तरफ जो मुसलमान हो गए थे और अल्लाह के नबी की ऊपर यानी कुरान पर ईमान लाते, वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतरा यानी पिछली शरीयत पे भी ईमान लाते, और क्या करते हैं, वल मुक़ीमीन अस्सलात, ये आप नमाज़ें भी पढ़ने लग गए, वल मूतून अज़्ज़का, सूद की बजाय ज़कात देने वाले हो गए, वल मुमिनून बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले, वल यौमिल आखिर, और यौम आखरत पर ईमान लाने वाले, उलाइका सनूतीहिम अजरन अज़ीमा, ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला अजर अजीम देगा। पिछली कितनी आयतों में यहूद की बदामालियों का तस्करा था, यहाँ एक आयत में अब्दुल्ला बिन सलाम और उसैद और सलबा जैसे सहाबा की तारीफ कर दी कि जिनके दिल तासुब से पाक होते हैं ना, फिर वो इन सारी बातें करने वालों के बीच में से ही उठ के सारे वो काम करने लगते हैं जो अल्लाह का हुक्म है, राह से खून फिल इल्म, इल्म रसूख हासिल करते हैं, वो अपनी मर्जी की बातें नहीं कर रहे होते, उनको पता चल गया, क्योंकि इनको पता था जो बातें हमारी तौरात और इंजील में वो अल्लाह के नबी के बारे में सच हैं, नतीजे में इन्होंने अपने आप को उस चीज़ के साथ जोड़ा। तो ये एक पूरा मैंने कोशिश की कि पाइल अप कर दूं पूरे टॉपिक को, यहाँ तिलावत सुनते हैं, थोड़ी सी बात हम इंशाल्लाह इस पे डिस्कशन के रंग में इनमें से कुछ कुछ पॉइंट्स पे करेंगे, लेकिन इससे पहले तिलावत।
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ رسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً.